त्रिलोक सर लेक्चर नंबर 13। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, बलगोविंदसिहामणि किरणकलावरुणचरणं किरणं विमलयरणेमि चन्दं त्रिभुवनचन्दं नमंसामि। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह त्रिलोक सार नामक ग्रंथ है और उसके हिंदी टीका के 55 पृष्ठ पर हम आगे 55। यहाँ अपनी बात चल रही थी ये 14 धाराओं की, उसमें हमने देखी थी सर्वधारा है वो एक से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 एक एक से बढ़ती हुई अंतिम स्थान है उसका केवल ज्ञान। तो इस धारा में कितनी संख्याएं होगी या कितने अंक होंगे तो कहते के केवल ज्ञान प्रमाण उसमें उसकी उसके डिजिट्स है यानी उसकी अविभाग प्रतिच्छेद उसी को केवल ज्ञान भी कह देते। केवल मात्र केवल ज्ञान इतना ही कह देने से उसका अर्थ होता है वो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। दूसरी धारा हमने देखी एक सर्वधारा, फिर समधारा, केवल सम संख्याओं को लेंगे तो वो दो दो से बढ़ते हुए हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अंतिम स्थान है केवल ज्ञान। फिर विषम धारा, विषम धारा में एक से शुरू होता है 1, 3, 5 एक एक से बढ़ते हुए अंतिम स्थान कितना होगा
केवल ज्ञान माइनस वन।
ये तो आसान है, उसके स्थान समान ही हो गए, एक से शुरू होकर जल्दी समाप्त होते, वो दो से शुरू होकर तो केवल ज्ञान पर समाप्त होते, बात एक ही है। यानी केवल ज्ञान के प्रमाण से आधे प्रमाण इसकी संख्या है। उसके बाद हमने कृति धारा देखी थी, यानी इसमें मात्र वर्गों को लेना है, वर्गों की संख्याओं को। तो पहले 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, इस तरह से इस धारा में मात्र वर्गों को ही लेना है, अंतिम स्थान होगा केवल ज्ञान क्योंकि वो भी वर्ग स्थान है। ये हो गई कृति धारा। कृति धारा के बाद जो अकृति धारा है उसमें क्या करना है कि कृतियों को छोड़कर जो कोई संख्या है उसको यहाँ ले लेना है। जैसे 1 को लेना कृति में और अकृति में 2 और 3 को रखना, 4 को लेना है कृति धारा में, 5, 6, 7, 8 को लेंगे अकृति धारा में। इस तरह जो जो वर्ग के वर्ग रूप जो स्थान है उसको तो कृति धारा में लेना और जो वर्ग नहीं है ऐसी जो संख्या है उसको अकृति धारा में लेना। तो कृति धारा में टोटल कितने हो गए, तो देखो कितनी संख्याओं का वर्ग हो सकता है, तो केवल ज्ञान की मूल तक की संख्याओं के वर्ग हो सकते हैं। इसलिए कृति धारा में कितने पद हो गए, कितने स्थान हो गए, तो केवल ज्ञान के प्रथम वर्ग मूल प्रमाण उसमें स्थान हो गए। ये बात ख्याल में आई ना। और अकृति धारा में कितने हो गए, तो केवल ज्ञान माइनस उसका प्रथम वर्ग मूल इतने उसमें स्थान हो गए। यहां तक की बात आ गई ना ख्याल में। तो कृति और अकृति के बाद अभी घन धारा और अघन धारा की बात चलेगी। घन धारा में ऐसे है जो घन रूप संख्याएं है उसको हमको घन धारा में लेना है। तो घन रूप, पहली घन रूप संख्या 1 का घन 1 है, फिर 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है, इस तरह से आगे चलेगी गाड़ी। तो ये हमको देखना है अंतिम घन कौन सा है, जिसको आसन्न घन कहा, केवल ज्ञान का आसन्न घन, उसको निकालने का भी तरीका बताया, वो हम फिर पढ़ेंगे यहाँ पर। आसन्न यानी नजदीक का, केवल ज्ञान के क्लोजर कौन सा घन होगा? केवल ज्ञान तो घन स्वरूप नहीं है संख्या, पर उसका आधा घन स्वरूप है ये बताया था, पर वो लास्ट अंतिम स्थान नहीं है, उसके भी आगे थोड़े स्थान चले जाएंगे तो घन स्वरूप संख्या का अंतिम स्थान आएगा। यही बता रहे थे केवल ज्ञान के आधा तो घन रूप है, उसके लिए उन्होंने पनट्टी का उदाहरण दिया, पनट्टी का आधा है वो घन रूप संख्या होगी, परंतु उसके आगे भी कुछ घन के स्थान होंगे, वो हम यहां देखेंगे, पहले पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखो ये हाँ 55 पर आए थे, वो घन धारा का स्वरूप जो गाथार्थ बताया था 54 पृष्ठ पर, उसको दोबारा पढ़ते हैं, नीचे का पैराग्राफ 1 और 8 को आदि करके, 1 और 8 को, एक ही घन रूप संख्या है तो 1 को लेंगे, उसके बाद 8 को लेंगे क्योंकि वो भी घन रूप संख्या है, उसके बाद 27 को लेंगे वो भी घन रूप संख्या है, तो इससे आदि में ये सारे ले लिया। एक बिल्कुल, क्योंकि ये संख्या है ना, धाराओं में एक को गिना, संख्या कौन सी वर्ग धारा में? द्विरूप वर्ग धारा कहाँ ही है, केवल वर्ग धारा है। द्विरूप का अर्थ होता है दो का, दो के वर्ग 4 से शुरू होता है, उस धारा का प्रथम स्थान 4 है, वो अभी हम वहां तक नहीं आए द्विरूप वर्ग धारा तक, अभी तो हम यहाँ हाँ उसका प्रथम स्थान 4 है, हाँ 1 है, यहाँ मात्र वर्गों को लेना है, यहाँ तो घन को ले रहे हैं, अभी तो घन धारा चल रही है, 1 का वर्ग भी 1 है, 1 का घन भी 1 है, यानी सर्वधारा का प्रथम स्थान 1 है, विषम धारा का प्रथम स्थान 1 है, कृति धारा का प्रथम स्थान 1 है, घन धारा का प्रथम स्थान 1 है, ख्याल में आती है बात, क्योंकि 1 का वर्ग करो घन करो एक ही रहता है। अब ये गाथार्थ हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, 1 और 8 को आदि करके केवल ज्ञान के अर्ध भाग के, यानी केवल ज्ञान का अर्ध भाग ये घन स्वरूप है, अब उसका जो घन मूल होगा, यानी जिसका घन करने पर केवल ज्ञान का अर्ध भाग आता है, ऐसी जो संख्या है उसको कहेंगे केवल ज्ञान के अर्ध भाग का घनमूल, उसके ऊपर ऊपर जो घनमूल रूप स्थान प्राप्त हो, यानी उस वहां तक वो अंतिम स्थान नहीं, उसके ऊपर भी कुछ स्थान है, उनको केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल में मिलाने से, यानी जितने स्थान है उसमें मिला देंगे, जो स्थान बनता है उसे आसन्न घनमूल कहते हैं। ये घनमूल की बात है। दोबारा देखो, पहले क्या कहा हमने, केवल ज्ञान का आधा प्रमाण किया वो घन रूप संख्या है, तो उसका घनमूल क्या है उसको हमने देखा, तो कहते हैं उस घनमूल का घन क्या है, तो केवल ज्ञान का आधा प्रमाण, पर उससे भी ऊपर कुछ घन संख्या है, तो कहेंगे वो घनमूल के ऊपर 1 बढ़ाएंगे तो उसका घन निकालेंगे, उसके ऊपर 2 बढ़ाएंगे उसका घन निकालेंगे, उसके ऊपर 3 बढ़ाएंगे उसका घन निकालेंगे, ऊपर मान लेते हम समझने के लिए कहेंगे कि उस केवल ज्ञान के आधे के घनमूल में हमने और 10 अंक मिला दिए, उसका भी घन हो सकता है, मान लेते हैं, तो हमारा आसन्न घनमूल क्या होगा, केवल ज्ञान के आधे का घनमूल प्लस 10, क्योंकि उसका भी हम घन बना सकते हैं, ये हमने समझने के लिए आपको 10 संख्या बताई। अब केवल ज्ञान के आधे के घनमूल प्लस 10 का जो घन होगा वो अंतिम घन स्थान होगा, उसको आसन्न घन कहेंगे, ये आसन्न घनमूल कह रहे हैं, आसन है ना नजदीक का। देखो फिर से इसको पढ़ेंगे, 1 और 8 को आदि करके केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल से ऊपर ऊपर जो घनमूल रूप स्थान प्राप्त हो, उनको केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल में मिलाने से जो स्थान बनता है उसे आसन्न घनमूल कहते हैं। कहाँ घनमूल है ना, अब इस आसन्न घनमूल का घन समझ में, आसन्न घनमूल का घन करो वो अंतिम घन स्थान होगा, वो घन ही इस घन धारा का अंतिम स्थान है। कैसे निकाला हमने, केवल ज्ञान का आधा किया, केवल ज्ञान का आधा घन रूप संख्या है, उसका घनमूल निकाला। अब उस घनमूल वो तो अंतिम स्थान नहीं है जिसका घन हो सकता है, ऐसे और भी संख्या आगे आगे ने, जैसे हमने एक के बाद दो का घन लिया, फिर तीन का घन लिया, चार का घन लिया, पांच का घन लिया, अभी हम सौ की बात हमने की थी पहले, एक से सौ तक हमारी संख्या है मान लेते हैं, अभी सौ का आधा घन रूप संख्या नहीं है उसको बात छोड़ दो, घन रूप संख्या हम हमारी 65,536 जो है अंतिम स्थान इन्होंने माना था उसका आधा करो, वो घन रूप संख्या है, वो किसका घन है तो उसको निकालेंगे, यही यहाँ संदृष्टि में भी बताएं उन्होंने। संदृष्टि पढ़ेंगे तो ये ख्याल में आएगा, फिर हम इस वाक्य पर दोबारा चले जाएंगे। देखो विशेषार्थ 55 पेज पर, किसी भी संख्या को तीन बार परस्पर गुणा करने से जो संख्या आती है वह घनधारा की संख्या कहलाती है, क्योंकि वो सारी घन रूप संख्या है। एक एक यानी एक का घन एक है, दो का घन आठ है, तीन का घन 27 है, चार का घन 64 है, पांच का घन 125 है। इस प्रकार अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल प्राप्त होता है, घनमूल नहीं प्राप्त होता,
घन प्राप्त होता है,
केवल ज्ञान का अर्धभाग मिलता है, केवल ज्ञान का अर्धभाग प्राप्त होता है, ये चाहिए ये वाक्य। घनमूल घनधारा में कैसे लेंगे हम, एक आठ से शुरू करके हम आगे बढ़ते हैं, अर्धभाग का घनमूल प्राप्त होता है, उसका घन केवल ज्ञान का अर्धभाग है, उसमें आगे ये वाक्य ले। इस प्रकार अनंत स्थान आगे जाकर, क्योंकि स्थान जा रहे हैं ना हम आगे, अच्छा पांच का घन कर रहे, तीन का घन कर रहे, चार का घन कर रहे, पांच का घन कर रहे, इस प्रकार जाना है, तो अनंत स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल प्राप्त होता है, उसका घन, उसका घन लिखना, ये बीच में जो फुल स्टॉप है ना, हाँ उसका घन, क्योंकि जैसे यहाँ पांच 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 तीन बार लिया वैसे केवल ज्ञान के अर्धभाग के घनमूल को तीन बार लिखेंगे हम। नहीं नहीं कुछ नहीं, देखो ऐसा भाग का घनमूल प्राप्त होता है उसका घन, या बीच में डालो उसका घन, घनमूल का घन, देखो केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल प्राप्त होता है, क्योंकि हमने किसको ऑर्डर में रखा, एक दो तीन चार पांच इस तरह से, तो हमें कहाँ तक पहुंचना है, केवल ज्ञान के अर्धभाग के घनमूल तक, फिर उसका घन करना, क्योंकि यहाँ एक तीन बार लिख के आपस में गुणा किया है उन्होंने, अर्धमूल का घन क्या है, तो केवल ज्ञान का अर्धभाग, तो यहाँ लिखा ना केवल ज्ञान के अर्धभाग का घनमूल प्राप्त होता है उसका घन, जो केवल ज्ञान का अर्धभाग, उसका घन जो, ऐसा शब्द डालू उसमें, उसका घन जो केवल ज्ञान का अर्धभाग, घन स्वरूप ही है नेचुरल ही ना, क्योंकि हमने किसी का घन किया है, समझ में आया, एक दो तीन से शुरू किया, एक का घन, दो का घन, तीन का घन, यहाँ इन्होंने ओरिजिनल में भी ये जो यहाँ लिखा है ना सेंटेंस, संस्कृत पढ़ेंगे जरा, 60 के संस्कृत अंक संदृष्ट प्रदर्शते एकाष्ट प्रभृतिम 1827 एवं अनंतानि घनस्थानानि गत्वा केवल केवल हमने वो पनट्ठी मान ली थी दलस्य, उसका दल करने ने आधा करना, उसके आधा वो 32,768 घन स्वरूपस्य, ये जो घन रूप है यहाँ यहाँ लिखा ना, ऐसे जाने पर अनंतानी घनस्थानानी गत्वा, ऐसे अनंत घन स्थान जाने पर केवल केवल हमने पनट्टी प्रमाण माना है, क्योंकि अंक संदृष्टि है, यानी केवल ज्ञान हम कहेंगे, उसका दल यानी उसका आधा घन रूपस्य, उसका आधा जो घन रूप है उसका जो मूल है, क्योंकि हमने 1827 को अधि दिए तो उसमें अर्ध भाग लेना और बाद में उसका मूल कहना,
उसका घन मूल
निकालना। हाँ, यहाँ लिखा ना केवल केवल, फिर उसका दल करना ने आधा करना, ये जो घनरूपस्य यन मूलम, केवल ज्ञान का अर्ध भाग जो घन रूप है उसका जो घन मूल, ऐसा चाहिए यहाँ पर भी, गाथार्थ में भी ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो 1-8 वो धारा में घन मूल नहीं है, वो धारा में तो केवल ज्ञान का आधा भाग है। ये जो संस्कृत का अगर भाषांतर करते हैं तो ऐसे केवल ज्ञान केवल उस 65 लिखा दलस्य, उसके आधे के घन रूप, जो आधा जो घन रूप है, ऐसा यहाँ लिखा ना 1-8 को आदि करके केवल ज्ञान का अर्ध भाग जो घन स्वरूप है, वो उस धारा में केवल ज्ञान का अर्ध भाग आएगा, उस धारा में 1-8 वगैरह जो धारा निकलेगी ना 1-8-27, उस धारा में क्या आएगा, केवल ज्ञान का अर्ध भाग आएगा, और उसका जो घन मूल है उसको आसन, उसके आगे कुछ स्थान जाकर आसन्न घन मूल मिलेगा। तो कहते यहाँ ये ऐड करना है आपके गाथार्थ में, गाथार्थ का पहली लाइन 1-8 को आदि करके केवल ज्ञान के अर्ध भाग ऊपर लिखना जो घन स्वरूप है उसके, के तो लिखा है वहां पर उसके घनमूल से ऊपर, अभी समझ में आई ना बात, 1-8 वगैरह जो हम लिखते गए उस धारा में केवल ज्ञान का अर्ध भाग आएगा किसी एक स्टेज पर, वो भी घन रूप है, अब उस घन रूप जो संख्या है उसका घनमूल निकालना, केवल ज्ञान के अर्ध भाग का घनमूल, उसके ऊपर ऊपर जो घनमूल रूप स्थान प्राप्त हो, घनमूल रूप स्थान हम कैसे निकल करेंगे, उसमें एक ऐड करो उसका, वो भी घनमूल रूप है क्योंकि उसका घन हो सकता है, 2 ऐड करो उसका घन हो सकता है, 3 ऐड करो उसका घन हो सकता है, मान लेते हैं ना 10 ऐड किए उसका भी घन हुआ समझने के लिए, तो घनमूल का अंतिम स्थान कौन सा होगा, वो अर्ध भाग का घनमूल प्लस 10, वहां तक के संख्याओं का घन हो सकता है, उसके ऊपर एक बड़ा हो तो वो केवल ज्ञान को सरप्लस करेगा, तो उसको नहीं लेना है। तो कहते हैं घनमूल रूप जो स्थान प्राप्त हो उनको केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल में मिलाने से, जैसे हमने वो घनमूल में 10 मिलाए थे, तो यहाँ जितने हो उसको मिलाने से जो स्थान बनता है उसे आसन्न घनमूल कहते हैं। ये आसन्न घनमूल की बात है, आसन्न घन की बात तो बाद में करेंगे, ये आसन्न घनमूल का जो घन होगा वो केवल ज्ञान का आसन्न घन होगा, यानी केवल ज्ञान के पहले उसके नजदीक वाला जो अंतिम घन संख्या है उसको कहेंगे आसन्न घन। ये आसन्न भव्य शब्द सुना होगा ना, नजदीक का, अभी जिसका संसार किनारा नजदीक आया है उसमें आसन्न भव्य जी, इसी आसन्न घन है ये। देखो इस आसन्न घन मूल का घन ही इस घन धारा का अंतिम स्थान है। अब इसी को वो पनट्टी का उदाहरण देके समझाएंगे, विशेषार्थ का दूसरा लाइन है, दूसरी लाइन हम फिर पढ़ते, देखो केवल ज्ञान के अर्ध भाग का घनमूल निकाल कर उसके ऊपर एक एक स्थान चढ़ते हुए घनमूल के जो स्थान प्राप्त होते हैं घनमूलों के, उन्हें केवल ज्ञान के अर्ध भाग के घनमूल में जोड़ देने से आसन्न घनमूल प्राप्त होता है। यहाँ मूल शब्द डालो, कल हमने डाला था इसको, अरविंद भाई थे कि नहीं, आप गए थे, क्योंकि आसन्न घन नहीं होगा क्योंकि मूल के ऊपर हमने 10 ऐड करिए थे ना, तो ये आसन्न घन मूल कहलाएगा। यहाँ मूल शब्द डालो इसमें, इस आसन्न घन मूल का घन करने से जो स्थान प्राप्त होता है ये नई पुस्तक में ऐसा ही है कि यही मिस्टेक। अच्छा, वही इस धारा का अंतिम स्थान है। आसन्न घनमूल से यदि एक अंक भी अधिक ग्रहण किया जाएगा तो उसका घन केवल ज्ञान के प्रमाण से अधिक हो जाएगा, अतः आसन्न घनमूल से आगे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये अभी सरल है ना अर्थ इसका। नहीं लिखे, 53 पर था ना।
तो आसन्न घनमूल का घन से आगे ग्रहण नहीं करना चाहिए,
उसके आगे के घनमूल नहीं ग्रहण करना।
नहीं, घन धारा की बात कर रही है।
नहीं नहीं, देखो, आसन्न घनमूल से यदि एक अंक भी अधिग्रहण किया जाएगा, आसन्न घनमूल क्यों कहा, वो अंतिम घनमूल है, अंतिम घनमूल है, उसके आगे, उस घनमूल के आगे एक भी बढ़ा दिया जाएगा, जैसे 1 से 100 तक अंतिम घनमूल, घन कौन सा है, अंतिम घन 64 है, क्योंकि उसके आगे के जो है 5 का अगर हम घन करने जाओ तो 125 हो जाता है, तो आसन्न घनमूल क्या है, 4। ये यहाँ लिखना चाहते हैं, वो 4 में एक अधिक बढ़ जाए तो 5 हो जाएगा, और 5 का घन 125 होगा, वो 100 को सरप्लस करता है। ऐसे ही वो आसन्न घनमूल है, उसके ऊपर एक भी अंक बढ़ा दो और उसका घन करो तो केवल ज्ञान से बढ़कर हो जाएगा, जो हो ही नहीं सकता। आपका समाधान नहीं हुआ अभी? क्या हुआ?
नहीं, ये वो क्या है, मेरा बता दे।
कल अरविंद भाई ने वो करेक्शन किया था क्या, 53 पेज पर? अच्छा, हाँ। त्रेपन, 54, 55, ये तीनों में, और 52 पर भी वो था ना, 26 का 37 किया था हमने। हाँ, करेक्शन, वो करेक्शन के पेजेस लिख के रखेंगे। हाँ ना, हाँ ना, इसीलिए जरा छोटे छोटे में लिखते हैं, केवल पेज नंबर लिखते हैं। अच्छा, 34, 35, 52 भी है ना, 52 में है ना, वो नीचे 26 का 36 किया है। क्या शुद्ध लेखन, ये देखो, ये नीचे लिखा ना, 4 × 4 = 16, फिर 25, फिर 36, नीचे से दूसरी लाइन। हाँ, पर फिर करेक्शन तो है ही नहीं, 26 तो हो नहीं सकता।
34 पे नहीं है ना करेक्शन, 34 पेज पे नहीं है ना,
बताए उन्होंने अपने 33-34 बताया था ना, 34 में एक एक है ना, एक एक के बदले एक बार एक रखा था, वो भी करेक्शन है, और 4 नंबर के बदले अब लिखा था, वो भी करेक्शन है। थर्टी फाइव पर भी है, 30 नहीं बोला था उन्होंने, 33 बोला था। देखो, नई पुस्तकों में करेक्शन है, कहीं कहीं गलत है, वो 1 × 3 लिखा था, 3 × 4 नहीं, वो 1 × 1 × 4 है। 33 का पहली लाइन, तुम आपके उसमें शायद करेक्टेड हो, तो आप में करेक्ट करके लिखा है, हमारे में पुराना गलत है, जाने दो। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ मिस्टेक है वो लिखनी पड़ेगी, शुद्ध लेखन की नहीं, वो 36-26 जो है वो केवल शुद्ध लेखन की मिस्टेक नहीं कहलाते, ह के बदले है हो जाता तो ठीक है, परंतु यहाँ अंक में हो जाता है, और वो करेक्शन करना चाहिए ना, क्योंकि उसको सही समझना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये करेक्शन हमने किया, अपना पेज था 55। अब यह आसन्न घनमूल की बात आ गई थी यहाँ पर, अब इसी के अंक संदृष्टि जो ओरिजिनल संस्कृत में भी बताई है, अंक संदृष्टि 1, 8, 27, 64, 125, इस प्रकार अनंत घन स्थान आगे जाकर, ये घन स्थानों को गिना है, केवल ज्ञान जिसको हमने पनिट्ठी माना था उसके आधे અને 32,768 उसके घनमूल 32 प्राप्त होगा। ये अनंत घनस्थान आगे जाकर वो नहीं प्राप्त होगा, प्राप्त तो होगा 32,768 जिसका घनमूल ये है। ये उन्होंने जो हमने गाथार्थ में करेक्शन किया है वैसे यहाँ पर भी चाहिए कि 8 को आधे देकर केवल ज्ञान के अर्ध भाग जो घन स्वरूप है, केवल ज्ञान 65,536 का आधा, क्योंकि उस घन स्थानों में वो आधे को लेना है, घनमूलों को नहीं लेना है। ये वाक्य का अर्थ तो ऐसा नहीं होता,
घनमूल 32 के लिए घनमूल।
हाँ, परंतु उस धारा में क्या आएगा, वो 32,000 वाली बात आएगी। घनमूल तो हम बाद में निकाल रहे हैं। तो देखो आगे जाकर केवल ज्ञान का आधा या कि केवल ज्ञान के आधे जो घन स्वरूप है केवल ज्ञान का आधा जो घन स्वरूप है उसका उसका घनमूल 32 प्राप्त होगा। या उस धारा में क्या प्राप्त होगा, आधा प्राप्त होगा। घन स्वरूप है उसका घनमूल 32 है चाहिए, प्राप्त होगा भी नहीं, प्राप्त तो ये 32,768 प्राप्त हुआ। तो देखो इस प्रकार अनंत घन स्थान आगे जाकर केवल ज्ञान का आधा जो घन स्वरूप है
उसका घनमूल 32
है, वह प्राप्त होगा। उसका घनमूल इतना है, यानी उस स्थान में ये प्राप्त होगा और उसका घनमूल 32 है। इसके ऊपर अभी 32 के ऊपर एक एक स्थान चढ़ते हुए, यानी 33 का भी हम गण करो, 34 का करो, 35 का करो, 36, 37, 38, 39, 40, इन 8 स्थानों को 32 में जोड़ देने पर 32 और 8 40 हो जाता है, वो घनमूल प्राप्त हुआ। यही आसन्न घनमूल कहलाता है, क्योंकि इसका जो घन कर सकते हैं वो 65,536 से ऊपर नहीं जाएगा। तो कहते 40 का घन क्या होता है, 64,000 हो जाता है। यह घनधारा का अंतिम स्थान है, हमने जो संख्या मान ली है उसमें यह अंतिम स्थान हो जाएगा। यदि 40 आसन्न घनमूल के आगे एक भी अंक अधिक जैसे 41 ग्रहण किया जाए तो उसका घन 68,921 प्राप्त होगा, जो केवल ज्ञान के प्रमाण से अधिक हो जाएगा। किंतु ऐसा हो नहीं सकता, अतः आसन्न घनमूल 40 का घन 64,000 ही घनधारा का अंतिम स्थान है। हमने जो संख्या मानी है उसमें ये अंतिम स्थान है। ऐसे यथार्थ में क्या होगा, केवल ज्ञान का जो अर्ध भाग है, जो घन स्वरूप है, उसका घनमूल निकालना और उसके आगे जितने स्थान जाकर जिनका घन हो सकता है वो अंक उसमें मिला देना, वो आसन्न घनमूल होगा। आसन्न मूल घनमूल का घन करो, वो आसन्न घन कहलाएगा। अब ये 64,000 को आसन्न घन कहते हैं और इसके घनमूल 40 को आसन्न घनमूल कहते हैं। इस घनधारा के ये ध दिख रहा है कहीं कहीं, इस घनधारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के आसन्न घनमूल प्रमाण ही होते हैं। ये तो आसान है ना, जैसे हमने कृति धारा के स्थान कितने हैं तो उसके वर्गमूल जितने हैं, और ये घन धारा के स्थान कितने हो गए, आसन्न घन के घनमूल प्रमाण हो गए, या डायरेक्ट आसन्न घनमूल प्रमाण कहो तो वही अर्थ होता है। अब कहते अथ, ये 61 नंबर को हमको पढ़ना है। केवल दलस्य केवल दल ने क्या होता है अश्विन भाई?
केवल ज्ञान का
आधा, केवल ज्ञान का आधा, दल करना है ने उसके दो करना। घनात्मकत्व यानी वो घनात्मक है, इसकी उपपत्तिम, ये केवल ज्ञान का आधा घन स्वरूप है, कहां से जाना ये पूछ रहे। पूर्वार्धे न दर्शयन, पूर्वार्ध ने गाथा का पूर्वार्ध ने पहली लाइन, पहली लाइन में केवल का केवल ज्ञान के आधा घनात्मक है उसकी उपपत्ति दर्शाकर दर्शन दर्शयन उत्तरार्धे, उत्तरार्धे न अघन धाराम आह, यानी दूसरी लाइन में दूसरी पंक्ति में अघन धारा की बात करते हैं। जो घन धारा के स्थान है, सारे घन संख्याओं को गिनेंगे अलग निकालेंगे, बीच बीच में जो बचेंगे वो सारे ही अघन धारा के स्थान हैं। जैसे एक को लिया हमने, एक के बाद आठ को लिया, तो दो तीन चार पाँच छः सात, ये सारे अघन धारा के स्थान हो गए। यानी इस एक गाथा में दो बातें बता रहे हैं कि केवल ज्ञान का आधा घन स्वरूप है ये बात भी बता देंगे और अघन धारा क्या है वो भी बताएंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे। समकदि सलवि कदिये दलिदे गण में थवि समगे तुरिये अघन सदसौवं वा विगण पदम केवलम ठाणम समकृति शला विकृतौ दलिते घन अत्र विषमके तुरिये अघनस्य तु सर्वं वा विघन पदम केवलम स्थानम। यहाँ कहते हैं अब गाथा के पूर्वार्ध में, यहाँ फिर सात अकड़ा क्यों डाला है, जैसे वहां पर भी उन्होंने ये घन धारा था इसलिए अघन धारा इसमें आने वाली इसलिए होगा शायद, सातवां अघन धारा का है इसलिए सात नंबर डाला। वहां पर भी हमने जो अब के बदले चार नंबर का बताया था, पर कृति धारा चार नंबर पे थी ना। पहली जो अब किया था वो अलग बात थी। हाँ देखो हम पढ़ते हैं, ये सात नंबर उन्होंने अघन धारा के लिए लिखा है और अथ का अर्थ अब तो यहाँ लिख ही दिया है। अब गाथा के पूर्वार्ध में केवल ज्ञान का अर्ध भाग घन रूप ही होता है इसको दर्शाते हुए उत्तरार्ध में अघन धारा का स्वरूप कहते हैं। गाथार्थ एक नियम बताएंगे यहाँ पर कुछ। द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की वर्गशला का राशि सम होती है, अब इसको हम समझेंगे। द्विरूप वर्ग धारा अभी हुई नहीं है पर हमने बहुत बार उसका जिक्र किया है। द्विरूप वर्ग धारा का अर्थ है द्विरूप यानी दो संख्या और उसका वर्ग है चार। इस वर्ग धारा में सभी आगे चार के साथ इसकी बिगिनिंग होती है। पहला वर्ग स्थान है चार, दूसरा वर्ग स्थान है 16, तीसरा वर्ग स्थान है 256, चौथा वर्ग स्थान है 65। हम चार ही संख्या लेते हैं तो इसमें क्या बताया, जिस वर्ग स्थान की वर्गशला का राशि सम होती है। आप बताएंगे ये वर्गशलाएं के ऊपर जो हमने एक दो तीन चार लिखा है ना, तो दो है वो वर्गशाला का कैसे समरूप संख्या है। प्रेरणा पहला, ये पहला वर्ग है चार, ये पहला वर्ग है तो इसकी वर्गशाला का विषम है। दो संख्या सम है तो दो वर्गशाला का किसकी है, 16 की है, तो जिसकी वर्गशाला का राशि सम है। अब 256 वर्ग तो है परंतु उसकी वर्गशाला का विषम है। चौथे नंबर पर 65 है, ये सारे वर्ग रूप ही संख्या है, चार भी 16 भी 256 भी और 65 भी, तो उसके ऊपर क्या हमने लिखा है चार लिखा है, यानी उसकी वर्गशाला का है चार जो समरूप राशि है। अब ये नियम बता रहे हैं यहाँ पर एक के द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की, चार ये पहला वर्ग स्थान है, 16 दूसरा वर्ग स्थान है, जिस वर्ग स्थान की वर्गशाला का राशि यानी उसका उसके वर्गों को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 सम होती है, उस वर्ग स्थान का यानी उस संख्या, जैसे हमारे पास दूसरे स्थान पर 16 है, 16 की वर्गशाला का है 2, तो 16 का अर्ध भाग कितना होता है
8,
ये घन राशि होती है, वो 2 का घन है। ख्याल में आई बात? फिर से देखो कि जिनकी वर्गशाला का राशि सम होती है उस वर्ग स्थान का यानी उस वर्ग का जो वर्ग स्थान है ना वहां पर जो कोई संख्या है वर्ग स्थान है वो वर्गों के जो स्थान भेद है उसकी बात है, वो कितने नंबर ऑफ स्थान है वो नहीं लेना। ये सारे वर्ग स्थान है, 4 भी 16 भी 18 भी, वो सारे क्या है वर्ग स्थान है, अलग अलग वर्ग है, और उसकी वर्गशाला का यानी कितने नंबर पर है उसको वर्गशाला का कहते हैं। तो जिस स्थान की वर्गशाला का समरूप होती है उस वर्ग स्थान का अर्ध भाग नियम से घन रूप ही होता है। अभी हमारे पास ये तो हमने जो संख्या लिखी है ना 4 16 256 18 और उसकी वर्गशाला का 1 2 3 4, तो 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, तो 4 सम संख्या जो 4 वर्गशाला का वाला वर्ग स्थान कौन सा है 65536, उसका आधा करो 32768 कुछ लिया था हमने, तो वो भी घनरूप स्थान होगा। अब कहीं पर भी चला जाओ आगे तो केवल ज्ञान जो है जो वर्ग स्थान है उसकी वर्गशाला का भी समरूप है, तो कहते उसका आधा घनरूप होगा, ये कहना
चाहिए
समरूप है
क्योंकि केवल उसका आधा का।
समझ में आई बात? हाँ देखो फिर से पढ़ेंगे गाथार्थ। द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की वर्गशाला का राशि सम होती है उस वर्ग स्थान का अर्ध भाग नियम से घनरूप ही होता है। अब दूसरी बात बता रहे, दूसरा एक रूल, तथा इसी द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की वर्गशलाकाएं विषम होती है, अभी 256 की वर्गशलाका है 3 विषम है, उस राशि का चौथाई भाग, 256 का चौथा भाग करना कितना आएगा, 64 आ जाएगा, नहीं उसका चौथा भाग, 4 से भाग देना उसको, केवल मात्र 4 64 आ जाएगा, वो घन रूप है। देखो जिनकी वर्गशाला का सम है उनका आधा भाग घन रूप है और जिनकी वर्गशाला का विषम है उनका चौथा भाग घन रूप है। जैसे 256 का चौथा भाग घन रूप है। ख्याल में इन बार अभी एक का तो नहीं करना है, वो तो एक का कुछ भी करो तो एक ही घन है, 3 है, तो 3 के बाद हम 5 लेते हैं, 5वें स्थान पर क्या है
बादल,
तो बादल का चौथा भाग करो वो भी घन रूप संख्या आएगी, विषम है
तो उसका चौथा भाग,
चौथा भाग घन रूप आएगा। पनट्ठी चौथे स्थान पर है, उसकी वर्गशाला का समरूप है, उसका आधा घन रूप है। ख्याल में आई नहीं है बात? द्विरूप वर्ग धारा में जो जो करके देखो चौथा भाग करना है ना, क्योंकि देखो पनट्ठी गुना पनट्ठी बादल होता है, यहाँ तक बात ख्याल में? अब पनट्ठी गुना पनट्ठी करना है और डिवाइडेड बाय 4 करना है,
तो पनट्ठी का चौथा भाग, तो पनट्ठी का चौथा भाग
नहीं होगा, वो वर्ग है उसका नहीं समझे, 16 गुना 16 256 होता है, तो 256 का चौथा भाग क्या है? हाँ तो 16 का आधा भाग से नहीं चलेगा उसमें। तो ऐसा कर सकते हैं, आपको गणित करने के सुलभ हो इसलिए पनट्टी गुना पनट्टी डिवाइडेड बाय 4, तो एक पनट्टी को चौथा भाग कर दो, एक पनट्टी का 14 भाग किया हमने तो 16384 आ गए, तो पनट्टी गुना 16384 वो घन स्वरूप है, वो बादल का चौथा भाग होगा। नहीं समझे? चौथा भाग निकालना है ना,
डिवाइडेड बाय 2, तो
मैंने बोला ना 16384 वो नंदीश्वर द्वीप की जो विस्तार है वही
इंटू 16384
पनट्टी गुना 16384 ये हमारा उत्तर आया, बादल का चौथा भाग
16384
है दिया है। उसका घन स्वरूप क्यों है, केवल ज्ञान का आधा घन स्वरूप कैसे होगा, उसमें भी ये पढ़े हम। हाँ निकालो ना, हमने पढ़ा था। ये बहुत सारे ऐसे हमें वहां पर रूल्स बताए थे उन्होंने।
नहीं, यहाँ पे पनट्टी तो विषम संख्या है, अरे सम संख्या है, तो ये पनट्टी का आधा है उसका चौथा भाग।
आधे पनट्टी, देखो मैंने आपको पनट्टी का नाम इसलिए लिया, यहाँ हमको बादल देखना है। बादल की वर्गशाला का 5 है, तो उसका चौथा भाग क्या होगा, घन स्वरूप होगा, इतनी बात है। तो बादल कैसे निकलता है, तो पनट्टी गुना पनट्टी, ये तो बादल आया और बादल का चौथा भाग इन्हें हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो आपको बादल की संख्या अभी मालूम नहीं है, याद नहीं है, पर 65536 तो याद है ना, तो एक 65536 ऐसा ही रखो और दूसरे को 4 से भाग दे दो तो यहाँ आ जाएंगे 16384।
ये गंधारा संख्या गंधारा में,
ये जो इसका उत्तर आएगा वो घन धारा में होगा, ये वो घन धारा में आएगा। समय ज्ञान चंद्रिका निकाली है, उसमें भी ये पढ़ा था हमने, आसन्न घन क्या है वगैरह वगैरह उसमें बताया था, पर्याप्ति प्ररूपणा में आता है ये सब, 230 के आजू बाजू दिखेगा, अघन अघन 227 में है। केवल ज्ञान का आसन्न घन किसे कहते हैं, तो केवल ज्ञान का प्रमाण 65536, उसका आधा करने पर इतना 227 जीव कांड का अपना यहाँ का जो ट्रांसलेशन है, तो उसका घनमूल है 32, उसके ऊपर 33 से लेकर 40 तक घनमूल के स्थान है, 40 का घन करने पर 64000 होता है, वही आसन्न घन जानना, क्योंकि 41 के घन करने पर 68921 होता है, जो केवल ज्ञान के प्रमाण से बढ़ता होगा सो संभव नहीं है। तो कोई कहेगा लास्ट लाइन कि केवल ज्ञान के अर्ध प्रमाण को घन स्थान तुमने कैसे जाना, तो उसका समाधान द्विरूप वर्ग स्थान के जो स्थान है, द्विरूप वर्ग धारा के जो स्थान कहेंगे उनमें पहले तीसरे पांचवे से लेकर जो विषम स्थान है उनके चौथा भाग प्रमाण, तो घन धारा के स्थान जानना चौथा भाग, विषम वर्गशाला का वाले जो स्थान है वो चौथा भाग, जैसे द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 4 है, उसका चौथा भाग 1 है, वह घन धारा का स्थान है, तीसरा स्थान 256 है, उसका चौथा भाग 64 सो घन धारा का स्थान है, ऐसे सर्वत्र जानना। पुनश्च दूसरे चौथे छठवें स्थान से लेकर समस्थान है उनके आधे प्रमाण घन स्थान जानना, जैसे दूसरा स्थान 16 उसका आधा 8 वह घनधारा का स्थान है, चौथा स्थान 65536 उसका आधा 32768 वह भी घन स्थान है, चूंकि केवल ज्ञान भी द्विरूप वर्ग धारा के समस्थान में है इसलिए इसके आधे प्रमाण को घन स्थान कहा है। यहाँ तो आगे ये अरविंद अश्विन भाई का प्रश्न पूछा केवल ज्ञान को द्विरूपवर्ग धारा के समस्थान में है ये कैसे जाना? जिस द्विरूपवर्ग धारा में है तो हमने मान लिया, पर वो समस्थान पर होगा ये कैसे जाना? तो कहते हैं केवल ज्ञान की वर्गशलाका का प्रमाण भी द्विरूपवर्ग धारा में ही कहा है। ये द्विरूपवर्ग धारा के जो स्थान कहे हैं तो द्विरूपवर्ग धारा में उसकी शलाका आती है। देखो अभी इसका अर्थ हम समझते हैं। हमारे पास जो नोन है वो पनट्ठी तक के हमारे पास स्थान है, चार है, 16 है, 256 है और पनट्ठी है। तो 16 की वर्गशलाका 2 है, तो इसमें तो वर्गस्थान में नहीं आती है। पनट्ठी की वर्गशलाका 4 है, वो द्विरूप वर्गस्थान में आती है। सभी की वर्गशलाका इसमें नहीं आती। 256 द्विरूप वर्ग धारा में तो है, परंतु उसकी वर्गशलाका 3 है, वो यहाँ कहीं पर भी उसमें नहीं आती। तो ऐसे ही वो बताते हैं कितने ही स्थान, कितने ही ऐसे जो संख्या है जिसकी वर्गशलाका भी इस राशि में आती है, जिसका वर्गमूल भी इस राशि में आता है। जैसे पनट्ठी का वर्गमूल है 256, वो तो इस राशि में आता है। पनट्ठी का अर्धच्छेद कितना है? 4 का अर्धच्छेद है 2, 16 का 4, 256 का 8, पनट्ठी का 16, तो इसकी अर्धच्छेद राशि भी द्विरूप वर्ग धारा में आती है। ऐसे आगे संख्या कहेंगे। तो जिनकी वर्गशलाका भी द्विरूप वर्ग धारा में आती है वो समस्थान पर है, ये कहना चाहते हैं। जिसकी वर्गशलाका द्विरूप वर्ग धारा में पाई जाती है तो ये वो वर्गशलाका सम संख्या है। फिर से, जिसकी वर्गशलाका द्विरूप वर्ग धारा में आती है, यानी जो कोई चार चौथे स्थान पर है, पनट्ठी है, उसकी वर्गशाला का द्विरूप वर्ग स्थान में, दूसरा स्थान है 16 भी सम संख्या है, 16 भी किसी की वर्गशाला का हो सकती है ना, क्योंकि आगे 16 स्थान आप वर्ग वर्ग करते जाओ। 256 द्विरूप वर्ग धारा के सभी स्थान सम संख्या के हैं। तो जिनकी जिनकी वर्गशलाका द्विरूप वर्ग धारा में आती है वो वर्गशलाका समरूप है।
तो पर यहाँ पे तो वर्गशलाका 1, 2, 3 तो वर्गशलाका द्विरूप वर्ग धारा में आती है, तो वो
द्विरूप वर्ग धारा में क्या है? 4, 16, 256, 256। ये जिनकी वर्गशलाका है, आगे चलकर ऐसी बड़ी बड़ी संख्या होगी नहीं जिनकी वर्गशलाका 16 है, जिनकी वर्गशलाका 256 है, जिनकी वर्गशाला का पनट्ठी प्रमाण है। समझ में आती बात? यानी इतने वर्गस्थान चले जाएंगे तो उसकी शलाका कौन सी है? तो पनट्ठी प्रमाण उसकी वर्गशाला का, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वर्गशलाका का स्थान इसमें आया है, इस स्थान में वर्ग धारा में, उसका अर्थ क्या? वो वर्गशाला का समरूप है। जैसे एक नंबर, चार के पहले कोई नंबर नहीं आते, ना 2 नंबर है ना 3 नंबर है। इसके आगे देखो, बादल की वर्गशाला का है 5, वो भी द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती। इकट्ठी की वर्गशाला का 6 है, वो भी इसमें नहीं आती है। 7-8 संख्या भी इसमें, 16 तक की कोई संख्या नहीं आएगी। तो 16 का स्थान द्विरूप वर्गशाला का में है, वो समस्थान है। 256 जो द्विरूप वर्ग स्थान का वर्ग स्थान है, यानी वर्ग द्विरूप वर्ग धारा का स्थान है, वो भी समरूप है। द्विरूप वर्ग धारा में जो जो संख्याएं आती है वो सारी समरूप है। एक बात तो ये इस धारा के प्रमाण में यहाँ जो संख्या है वही जिसकी वर्गशाला का है वो वर्गशाला का समरूप है कि नहीं है, ये कहना चाहते। तो केवल ज्ञान की वर्गशाला का भी द्विरूप वर्ग धारा की राशि में आती है। इन्हें केवल ये जो हम द्विरूप वर्ग धारा करते जाए, 4, 16, 256 करते जाओ, अंत में कौन सा स्थान आएगा? केवल ज्ञान। तो उसकी वर्गशाला का कोई प्रमाण होगा कि नहीं? वहां पर भले अनंत में हो तो कोई प्रमाण तो है, वो प्रमाण भी द्विरूप वर्ग धारा में आता है, उसके बहुत पहले आ जाएगा। वो जैसे पनट्ठी आती है चौथे स्थान में, यहाँ पर है, और पनट्ठी की वर्गशाला का 4, ये तो यहाँ पहले स्थान पर है। ऐसे केवल ज्ञान भले आगे बहुत आगे चलकर होगा, पर उसकी वर्गशाला का अनंत स्थान पहले आ जाएगी। समझ में आती है बात? ये तो हमने ये यहाँ पढ़ा था, यही कहते हैं। हाँ, इन्हें पढ़ा था, मुझे इतना ही याद है। यानी टोलरमा जी साहब के कमाल लगती कि ये सारी बातें उन्होंने बिल्कुल विस्तार से समझाई थी प्रश्नोत्तर रूप से। हम यहाँ वही बात पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ नई बात तो नहीं पढ़ रहे हैं। फिर से गाथार्थ। द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की, वर्ग स्थान यानी 4, 16, 256 ये वर्ग स्थान है, जिस वर्ग स्थान की वर्गशाला का राशि सम होती है। वर्गशाला का यानी वो 4 की वर्गशाला का 1 है, 16 की है 2, 256 की है 3, 15 की है 4। तो जिनकी वर्गशाला का राशि सम होती है, उस वर्ग स्थान का अर्धभाग यानी जैसे 16 का आधा 8, वो नियम से घन रूप ही होता है। तथा इसी द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की वर्गशाला का ही विषम होती है, जैसे 4 की वर्गशाला का विषम है, कितनी है 1 है, तो 4 का चौथा भाग 1 है, वो घन स्वरूप है। 16 की वर्गशाला का 2 विषम है, तो 16 का आधा करना 8, वो घन रूप है। तो कहते द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की वर्गशाला का विषम होती है, उस राशि का चौथा भाग घन रूप होता है। सर्वधारा में से, अभी ये दूसरी लाइन का अर्थ कर रहे हैं, सर्वधारा ने 1 से लेकर केवल ज्ञान तक, उसमें से घनधारा के स्थानों को कम कर देने पर, घनधारा में केवल घन घन रूप हमने संख्याएं निकाली थी, जैसे 100 तक हमने घन निकाले, 1 है वो घन रूप है, 8 है वो घन है, 27 वो घन है, 64 वो घन है, 4 स्थानों को अलग निकाले देंगे तो बच्चे कितने हैं बोलो? अघन धारा में कितने रहेंगे? निकाले ना हमने, 4 निकाले ना 100 में से, तो 96 रहेंगे ना, वही तो पूछा हमने। हमने 65 तक के नहीं पूछे, 65 तक के पूछने हैं, तो उसमें घन स्थान कितने के हैं, कितने के घन हो सकते हैं, हमने देखे 40 के, 40 घन मूल तक के घन हो सकते हैं, 41 को नहीं लेना है।
40
समझ में आई बात? तो कहते हैं उस घन धारा के स्थानों को कम कर देने पर, घनधारा के सभी स्थान कितने आसन्न घनमूल प्रमाण है, तो केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल वो क्या हो गया, अघनधारा के स्थान हो गए। तो केवल ज्ञान पर समस्त स्थान अघनधारा स्वरूप ही होते हैं, यानी हमको लिखना है तो केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल, जैसे हमने केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का स्क्वायर रूट लिया था प्रथम वर्ग, वो अकृति धारा के स्थान देखे थे, वैसे ही अघन के लेना, केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल यानी के माइनस के का आसन्न घनमूल। क्योंकि घन स्थान कितने हैं, आसन्न घनमूल जितने हैं उतने उसके घन के स्थान हैं, क्योंकि उतनी संख्याओं का घन कर सकते हैं, तो बीच में बचे कितने, तो ये जो घन स्थान के माइनस के का आसन्न घन मूल घनमूल। हाँ, वो तो स्क्वायर रूट के लिए, अकृति धारा के लिए कुछ नहीं, ऐसा ही लिख दो आसन्न घनमूल, क्योंकि केवल ज्ञान का डायरेक्ट कोई घनमूल नहीं निकालना है हमको, आसन्न घनमूल इतना ही कहेंगे के माइनस केवल ज्ञान का आसन्न घनमूल। ये बात ख्याल में आती है ना? मैंग मैं अभी बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत ही नीचे, क्योंकि आधे के ऊपर कुछ स्थान उसके घन के हो गए, आधे का भी जो घनमूल है ना, केवल ज्ञान के आधे का जो घनमूल है उसमें कुछ स्थान ऊपर चले जाएंगे। हाँ वैसे सौ के लिए तो चार आए, इस तरह से पनट्टी के लिए कितने आए, तो चालीस ही आए। पनट्टी के लिए आसन घनमूल चालीस आया है, इस तरह से लेना। वो विशेषण द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान की, यानी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया 16 है, 16 के वर्गशाला का होगी 2, पनट्टी के वर्गशाला का होगी 4, इकट्ठी के वर्गशाला का होगी 6, तो जिस वर्ग स्थान की वर्गशलाकाएं सम होती है, ये सम के लिए उन्हें 2, 4, 6, 8 बताया, उस वर्ग स्थान का अर्ध भाग नियम से घन रूप होता है। जैसे द्विरूप वर्ग धारा का द्वितीय स्थान 16, चतुर्थ स्थान 65,536 है, जिसकी वर्गशलाकाएं क्रमशः 2 और 4 है। यहां तक समझ में आई बात? जो समरूप ही है, अतः अभी वो वर्गशाला का 2 है तो उसका स्थान कौन सा है, तो 16, तो अतः 16 का अर्ध भाग 8 2 के घन स्वरूप है, क्योंकि 2 को 3 बार आपस में गुणा करने से वो संख्या प्राप्त होती है। और 65,536 का अर्ध भाग जो 32,768 है वो बत्तीस के घन स्वरूप है, 32 के घन स्वरूप है। इसी प्रकार द्विरूप वर्ग धारा में जिस वर्ग स्थान बादाल की वर्गशलाकाएं विषम होती है, उस वर्ग स्थान का चतुर्थ भाग, ये 4, 256 बादाल वगैरह बताए उन्होंने, वो वर्ग स्थान की वर्गशाला का कैसी है, तो विषम है। उस वर्ग स्थान का चतुर्थ भाग नियम से घन रूप ही होता है। जैसे द्विरूप वर्ग धारा के प्रथम स्थान 4 और तृतीय स्थान 256 की वर्गशलाकाएं 1 और 3 है, जो विषम है, अतः प्रथम स्थान 4 का चौथाई 1 प्राप्त हुआ, जो 1 के घन स्वरूप है, और तृतीय स्थान जो वर्ग स्थान कौन सा है, 256, उसका चौथा भाग करना, 64 प्राप्त हुआ, जो 4 के घन स्वरूप है। उपर्युक्त न्यायानुसार, यानी ये न्याय सर्व जगह पूरे धाराओं में लगेगा, केवल ज्ञान की वर्गशलाकाएं सम होने से केवल ज्ञान का अर्ध भाग घन रूप ही होता है, यह सिद्ध हुआ। फिर शंका कि केवल ज्ञान की वर्गशलाकाओं का समपना कैसे जाना जाता है, ये जो हमने अभी समय ज्ञान चंद्रिका जीवकांड में से पढ़ा था, उसका समाधान, केवल ज्ञान की वर्गशलाकाएं द्विरूप वर्ग धारा में ही उत्पन्न होती है, अतः समरूप है, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा के सभी स्थान समरूप है। शंका, केवल ज्ञान की वर्गशलाकाएं द्विरूप वर्ग धारा में ही उत्पन्न होती है, यह कैसे ज्ञात हो, ये प्रश्न तो वहां नहीं पूछा था, वहां तो यहीं तक रुके थे। तो आगे कही जाने वाली आगे जो गाथाएं हैं ना, वो मूल गाथाओं से ये बात जानी जाती है। कौन सी है? अवराखाय लद्धि वग्गशलाका तदो सगद्धचिरी, गाथा 71 से जाना जाता है। अर्थात द्विरूप वर्ग धारा में जो राशियां उत्पन्न होती है वे समरूप ही होती है, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा की राशि हमको मालूम है, 4 है, 16 है, 256 है, 50, वो सारे समरूप है। और केवल ज्ञान की वर्गशलाकाएं द्विरूप वर्ग धारा में उत्पन्न हुई है, अतः समरूप है। इसीलिए केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का अर्ध भाग घन स्वरूप है। ये तो यहां तो पहली लाइन का अर्थ हुआ। अब कहते अघन धारा की, वो घन धारा नहीं जिसमें वो घन रूप संख्या नहीं है, वो अघन धारा की संपूर्ण प्रक्रिया सर्वधारा सदृश है, किंतु इतनी विशेषता है कि सर्वधारा के स्थानों में से घनधारा के स्थान घटा देने पर शेष समस्त स्थान अघनधारा रूप है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इन स्थानों का प्रमाण काकाक्ष गोलक न्यायानुसार है। काकाक्ष गोलक यानी कौवे की वो जो है वो गोलक है, या तो राइट साइड में जाएगी या लेफ्ट साइड में, उसका जो अक्ष है आंख उसमें फिरती है। अर्थात जो स्थान घन स्वरूप है वे घन रूप ही है, अघन रूप नहीं है, और जो स्थान अघन रूप स्वरूप है वे अघन रूप ही है, घन रूप नहीं है। इसीलिए घन धारा के स्थानों को छोड़कर इस धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान पर्यंत ही है। घन धारा के स्थानों को छोड़कर की बात है, यानी केवल ज्ञान भी किसमें आएगा, अघन धारा में आएगा, क्योंकि वो जो आसन्न घन निकाला ना अंतिम, उसके ऊपर तो केवल ज्ञान तक के सभी जो संख्या होगी तो अघन धारा में तो आएगी आएगी, और बीच बीच में जितने हैं वो तो सभी उसमें में ले लेने। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 आगे कहां तक देखो, इस घन धारा, इस धारा के समस्त स्थान, जैसे हमने एक को लिया, एक के बाद घन धारा का कौन सा स्थान है, आठ है, तो सात तक ले लेंगे हम,
दो चार पाँच,
हाँ जैसे 2, 4, 5, 6 तक लिया, सात को भी लेंगे, आठ को नहीं लेंगे, फिर आगे नौ वगैरह क्यों ले लेना इस तरह से, तो 25, 26 को लिया, 27 को छोड़ दिया, 28, 29 ऐसे 62, 63 लिया, 64 को छोड़ा, 65 को लिया, नहीं 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 62, 63, 65 लिखा है हमारे में, यहाँ भी 7 और 9 लिखना चाहिए था, 2, 3, 4, 5, 6 7 और 9
नहीं लिखे
है, शुरुआत के तो लिखे है कि नहीं, बीच बीच में डॉट डॉट का अर्थ क्या है, उन्होंने बीच में 8 को लेना था घन, तो 7 और 9 लिखना था, सात नौ फिर आगे डॉट डॉट करो ना, क्योंकि हमने 8 को छोड़ दिया, यानी 8 ये घन रूप है, फिर उसके बाद 27 का नंबर आएगा, तो उसमें 25, 26 लिया, 28, 29 लिया, 27 को छोड़ दिया, ऐसे उसके बाद 64 को छोड़ दिया, इस तरह से आगे बढ़ते हुए
64
निकाल दो, 64 का 65 करो, 65 भी लिखा है क्या उसके अंदर, तो 64 के बदले 65 करो, नहीं नहीं गलत है, 64 को निकाल के बाद हमने 65 लिखा है इसमें, तो उसका मतलब आ गया आगे के सब है उसके अंदर। वैसे जाते जाते देखो 64,000 वाला जो है ना वो तो घन रूप है, उसके पहले की एक संख्या लिखी 63,999, 64,000 को नहीं लिया इसमें, 64,001 को लिया, 64,002 को लिया, आगे 65 तक लिखा, हाँ लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अंतिम स्थान 65 है, ये फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिख दिए। यहाँ तक की ख्याल में आई, कितनी धारा हो गई, हाँ सात हो गए, आने वाला आठवां है। यहाँ जो लिखा है ना अघन धारा की संपूर्ण प्रक्रिया सर्वधारा के सदृश है, ये ख्याल में नहीं आया मुझे ये वाक्य का अर्थ, अघनधारायाः सर्वधारावत् प्रक्रिया अयं तु विशेषः। अच्छा कुछ नहीं बात, वो तो कंटिन्यूअस सभी आंकड़े, ये इतनी विशेषता है कि उसमें से घन घन को टाल कर बाकी के ले लेना, एक एक से बढ़ते हुए केवल याद कर। बराबर, अब ये हो गई, अभी वर्ग मातृक धारा की बात चलेगी। मातृक यानी माता, वर्ग जिससे बना है उसको वर्ग मातृक कहेंगे। जैसे एक ये वर्ग रूप संख्या है, किसका वर्ग है, एक का। दो भी वर्ग की माता है, उसका वर्ग क्या है,
चार।
तीन भी वर्ग की माता है, उसका वर्ग है नौ। तो वर्ग मातृक के स्थान कितने हो गए हैं? हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी वर्ग मातृक धारा में क्या लेना है, जिनका वर्ग हो सकता है वो सभी संख्या, एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का, चार का, पांच का, छह का, सात, आठ, नौ, एक एक से बढ़ते हुए, तो उसका अंतिम स्थान क्या होगा? केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का वर्गमूल। मातृक लेना है ना, जिनका जिनका वर्ग हो सकता है वैसे लेना है। तो किसका वर्ग हो सकता है, केवल ज्ञान के वर्गमूल का वर्ग हो सकता है, जो केवल ज्ञान है, उसके ऊपर संख्या नहीं है, इसको वर्ग मातृक धारा कहेंगे। देख अभी हम गाथा पहले पढ़ेंगे, 62 नंबर। इह वग्गमाउ आए सौवगधारौ अचरिमरासीदु पढ़मं केवल मूलं तट्ठानं चावितच्चेव इह वर्गमातृकायां सर्वकधारा इव चरमराशिस्तु प्रथमं केवल मूलं तत्सानं चापि तदेव। देखो संस्कृत में स्पष्ट होता है अर्थ, यह वर्ग मातृकायाम, इस वर्ग मातृक धारा में सर्वक धारा इव, सर्वधारा के समान ही सब जानना, यानी एक एक से बढ़ते हुए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, परंतु डिफरेंस क्या है, तू यानी परंतु चरम राशि ही, उसकी अंतिम राशि कौन सी है, प्रथमम केवल मूलम, केवल ज्ञान का प्रथम वर्ग मूल है। तत्स्थानम चापि तदेव, और उसके स्थान भी उतने ही है, जो वर्ग मातृक धारा के स्थान कितने हैं, तो केवल ज्ञान के वर्ग मूल प्रमाण है, क्योंकि वही उसका अंतिम स्थान है, और एक दो तीन चार बढ़ते हुए सारी ले लेना वहां तक की संख्या, वो सारे कृति मातृक या वर्ग मातृक कहलाएगी। एक तो कृति धारा देखी थी, ये कृति मातृक धारा या वर्ग मातृक धारा कहेंगे इसको। देखो अभी हम इसको हिंदी पढ़ते हैं, आठ नंबर दिया ना उन्होंने, वर्ग मातृक धारा का स्वरूप। इस वर्ग मातृक धारा में स्थानादि की प्रक्रिया सर्वधारा सदृश ही है, यानी एक 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 से बढ़ते हुए, इसका अंतिम स्थान क्या करेक्शन है, हाँ डालो हमारे में है, इसका अंतिम स्थान केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल है, केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल प्रमाण पर्यंत ही इस धारा के स्थान होते हैं, एक से बढ़ते हुए वो सारे स्थान इसके हो गए। विशेषांक, जो संख्याएं वर्ग को उत्पन्न करने में समर्थ है उन्हें वर्ग मातृक कहते हैं, यानी जिनका जिनका वर्ग हो सकता है। इस वर्ग मातृक धारा के समस्त स्थान सर्वधारा सदृश ही होते हैं। क्यों कहा, क्योंकि एक दो तीन चार शुरुआत से सभी को लिया, डिफरेंस के कहाँ हुआ, उसके अंतिम स्थान कौन सा है, वहां। इस धारा की अंतिम राशि केवल ज्ञान का प्रथम वर्ग मूल है। वर्ग और मूल अलग अलग क्यों लिखते हैं, एक से प्रारंभ कर केवल ज्ञान के प्रथम मूल पर्यंत जितने स्थान है उतने ही स्थान इस धारा के है। जैसे मान लो अंक संदृष्टि में केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल 256 है, क्योंकि हमने पनट्ठी प्रमाण केवल ज्ञान को माना था, तो उसका वर्गमूल है 256। अतः इस धारा में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आगे 252, 253, 254, 255 और अंतिम स्थान 256 है, यानी 256 तक के सभी स्थान आ गए उसमें। यदि इसके आगे एक भी अंक अधिक ग्रहण किया जाएगा, यानी 257 अगर लेते हैं, तो उसका वर्ग केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगा, इसलिए उसको नहीं ले सकते। तो ये वर्ग मातृक धारा हो गई। अब आगे बताएंगे, अभी अवर्ग मातृक धारा कहाँ से शुरू होगी प्रेरणा बेन? अवर्ग मातृक धारा कहाँ तक लिया था? तक लिया, हाँ हाँ, वर्गमूल के आगे एक दो बढ़ते हुए, तो उस धारा में टोटल स्थान कितने हो गए? वर्गमूल माइनस कर देना उसके, कर देना तो अवर्ग मातृक हो जाएंगे सब, जिनका वर्ग नहीं हो सकता। हाँ बोलो बोलो। हाँ आगे देखते हैं। 21 प्रकार के संख्या प्रमाण में से ये 21 प्रकार कौन से है, याद है कि भूल गए? हाँ मयंक भाई, 21 प्रकार कौन से है? पहले में असंख्यात, असंख्यात के तीन, अनंत के तीन, मूल तीन सात हो गए, और सात में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। थोड़ा रिवीजन करेंगे क्योंकि छूट नहीं जाए। तीन अनंत के तीन सात हुए, हर एक के जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, तो 21 भेद हो गए। 21 प्रकार के संख्या प्रमाण में से, इस सबको मिलकर संख्या मान कहेंगे, संख्या प्रमाण में से इस धारा में मध्यम अनंतानंत का अंतिम बहुभाग और उत्कृष्ट अनंतानंत नहीं पाया जाता, शेष सभी संख्याएं पाई जाती है। देखो इसका अर्थ क्या होता है कि केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल कितना है, तो मध्यम अनंतानंत का कोई भेद है जो अंतिम की ओर का नहीं है, मध्यम वाला है। अंतिम बहुभाग नहीं है, बहुभाग को नहीं लिया, तो अनंतवे भाग को लिया,
बहुभाग को नहीं लिया,
बहुभाग को नहीं लिया। अनंतानंत के भी अनंत स्थान हो गए कि नहीं हो गए, तो उसमें अनंत बहुभाग को नहीं लिया, शुरुआत के थोड़ा अनंतवा भाग वो भी अनंतों में होगा, उसको लेना, वो है केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल। मध्यम अनंतानंत का कोई विशिष्ट भेद, जिसके बाद मध्यम अनंतानंत के बहुभाग प्रमाण स्थान अभी बाकी है। कहते शेष सभी संख्याएं पाई जाती हैं। कहते अथ, ये हमने पहले देख लिया, अवर्ग मातृक धारोच्यते। हाँ यहाँ उन्होंने 9 नंबर नहीं डाला है, आगे लिखा है, हिंदी में लिखा होगा। 63 नंबर पहले हम गाथा पढ़ेंगे।
ये घनधारा में भी स्थान तो अनंत हो गया ना?
हाँ घनधारा के स्थान भी, जैसे केवल ज्ञान का आधा लिया है, उसका वर्ग, उसका वर्गमूल ही मध्यम अनंतानंत है, तो आधा तो कितने ऊपर चला जाएगा? आधा ज्यादा है क्या वर्गमूल ज्यादा है?
आधा ज्यादा है।
पनट्टी का वर्गमूल 256 है और पनट्टी का आधा है 32,768। हाँ अकदी ने अकृति, जैसे हमने वर्ग लिखा है और वर्ग मातृक लिखा, हमने कृति धारा गिना था, यहाँ अकृति धारा कहेंगे। ये क्या है, उनको जैसे वो संस्कृत में या प्राकृत में छंद बनाना है, उनकी गाथा बनानी है, वर्ग भी कह सकते हैं, कृति भी सकते हैं, कदी कृति के लिए कदी शब्द आता है, तो कुछ भी हो अर्थ तो वही है। यहाँ अ कदी लिखा, वहां कृति और अकृति इतनी लिखा था, अभी उसके आगे माऊ ने मातृ को लिखना है। देखो गाथा पढ़ेंगे, कदी माऊ आदि केवल मूलम स्वरूपमंतम तु केवल मणेयमज्जम मूलूणम केवलम ठाणम अकृति मातृकाया आदि केवल मूलम स्वरूपमंतम तु केवलम अनेकम मध्यम मूलोनम केवलम स्थानम। 58 पृष्ठ पर आते हैं। अ वर्ग मातृक धारा का स्वरूप, ऊपर संस्कृत में उसी को अकृति मातृक धारा कहा है, बात एक ही है। अ वर्ग मातृक कहो या अकृति मातृक कहो, एक ही बात है। तो गाथा, क्योंकि उसमें पहले उन्होंने कृति शब्द डाला था ना, कृति धारा, अकृति धारा, तो इसको हम कृति मातृक और अकृति मातृक भी कह सकते हैं। इन्होंने पहले वर्ग मातृक कहा था, इसलिए अवर्ग मातृक कह रहे हैं। इस अवर्ग मातृक धारा का प्रथम स्थान केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से एक अंक अधिक है और अंतिम स्थान केवल ज्ञान है। अभी यहाँ तो डिफरेंशिएट करना आसान है, पहले के सब इधर रखो और बाकी सब अलग रखो। और मध्य स्थान अनेक प्रकार के हैं। इस धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से रहित केवल ज्ञान प्रमाण है। इतने ही स्थान किसके देखे थे हमने? केवल ज्ञान माइनस उसका प्रथम वर्गमूल वर्ग धारा के, जितने वर्ग हो गए उतने वर्ग माताएं होगी ना। कृति मातृक की बात, कृति मातृक को लेना मुझे, मैं अब अवर्ग मातृक को नहीं लेना, मुझे वर्ग मातृक के स्थान और वर्ग के स्थान समान होंगे, वर्ग धारा के स्थान और वर्ग मातृक धारा के स्थान, ये मुझे कहना था।
वो
समान होंगे। यहाँ क्या लिखते हैं? इस धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से रहित, ये हमने अवर्ग धारा के स्थान इतने देखे। निकालो अवर्ग धारा के स्थान। मैंने भूल से वर्ग धारा कहा, पर अवर्ग धारा आपने लिखा भी है वहां पर, कृति धारा और अकृति धारा लिखा। 53 पेज पर नीचे अकृति धारा का स्वरूप मिला। गाथा में देखो, गाथार्थ में केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से कम केवल ज्ञान इस धारा के स्थान है, यानी केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल। ठीक है, पर स्थान उतने ही हो गए ना, कैसे? वहां केवल वर्गों को लिया था, 1 से 100 तक गिन के मैं बताती हूँ आपको। उसमें अभी हम अवर्ग धारा की बात कर रहे हैं ना, अकृति धारा, अकृति धारा यानी जो वर्ग नहीं है वे धारा। तो वर्ग रूप संख्या कौन कौन सी है? 1 से 100 तक वर्ग एक है,
दो
नहीं है। वर्ग रूप संख्या कौन सी है? चार है,
एक चार,
नौ है,
नौ है,
16, फिर 25 है, 36
है,
49 है, 64 है,
81
है, और 100 है। कितने हुए? 10 हुए। और बाकी कितने दिखे?
90।
अब हम इसके गिनो, और कृति मातृक धारा के स्थान की है। मातृक कौन है? एक से दस तक के वर्ग हो सकते हैं, जितने वर्ग है उतनी वर्ग माताएं होगी कि नहीं होगी, ये मेरा ख्याल है। वो हमने बीच बीच में से निकाले थे, इसको इकट्ठा या एक बाजू से निकालना है। वहां पर भी वही था, केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान के वर्गमूल अकृति धारा में, और यहाँ क्या है अकृति मातृक धारा स्थान, तो उतने ही हो गए। जितने संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं, वर्ग भी उतने ही हो गए और वो मातृक भी उतने ही होगी। हाँ, यही यहाँ यही बात है ना। अभी जो हम अवर्ग मातृक धारा देख रहे हैं, उसके स्थान कितने? केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से रहित केवल ज्ञान है ना। वहां पर भी ऐसा ही था, के माइनस वर्गमूल के, समझ में आई ना। हमने सौ पर घटित करके बताया आपको, लक्ष्मी ख्याल में आया कि नहीं? मातृक धारा और बाकी अमातृक धारा, अमातृक धारा के कितने हुए? पनठी माइनस 256, 257, 258 आगे। अभी हम उसी में जिसका वर्ग नहीं हो सकता, ऐसे अकृति धारा के स्थान कितने होंगे? यहाँ अकृति मातृक धारा देखिए आपने, नहीं समझे? सौ तक गिनाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले कौन सी धारा बताना चाहती हैं आप, बताओ। नहीं, आप जो डिफरेंस बताना चाहते हैं ना अभी, दोस्त ये कौन सी लाइन है? ये वर्ग मातृक धारा है। ये वर्ग मातृक धारा के स्थान कितने हैं? 256 है, एक से 256। अभी वर्ग के वर्ग धारा के स्थान कितने हैं? वर्ग धारा के कितने हो गए बताओ? वर्ग धारा के स्थान बताओ कितने हो गए? वर्ग मातृक धारा का है, एक का वर्ग हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का हो सकता है, तो उसके स्थान 256 लिया आपने। अब मुझे बताओ वर्ग मातृक के स्थान कितने हो गए? अवर्ग मात्रा के हो गए, अवर्ग मातृक धारा के हो गए। मुझे आपका ये डिफरेंस, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे वही मिटाना है। देखो फिर से, आप पनट्टी वाला उदाहरण लेना चाहते हैं 256 का? हाँ, तो अभी कौन सी धारा बताना चाहती हैं आप बताओ। देखो, मैं वर्ग मातृक और वर्ग धारा के साथ एक साथ कंपेयर करे, वर्ग धारा और वर्ग मातृक धारा के स्थान समान है। हाँ, स्थान है, उसके नंबर ऑफ स्थान उनके समान है, उनकी संख्या समान है। तो वर्ग धारा के स्थान हम बाद में काउंट करेंगे। आपने वर्ग मातृक धारा के स्थान बताए एक से 256, एक से लेकर 256 तक हो गए, बराबर है ना। अभी हमको वर्ग धारा के स्थान गिनने हैं, वो कैसे निकालेंगे? निकालो वर्ग धारा का, कृति धारा जिसका नाम है, पनट्टी तक के जो कृति धारा के स्थान है उसको आपको गिनना है। कृति धारा ऑप्शन से लिए, पर कितने हो गए? 256 से कम हो गए? देखो गिनो जरा, एक, चार, नौ, 16, 25, छोड़ दिए ना। अंतिम स्थान कौन सा है? कैसा 256 है? पनट्टी है। पनट्टी किसका वर्ग है? 256 का। तो ये एक का वर्ग है, दो का वर्ग है, तीन का वर्ग है, चार का वर्ग है, पांच। वही तो, एक, ये एक का पहला स्थान है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवा है। तो पनट्टी के ऊपर 256 लिखेंगे ना, समझ में आई बात? वर्ग स्थान को हमको केवल लेना है, वो किसका वर्ग है उसका काउंट करो। यहाँ पर भी उसी पद्धति से निकाली थे, वो किसका वर्ग है तो 256 तक का वर्ग हो सकता है, 257 का करने जाओ तो पुण्य ठीक के ऊपर हो जाएगा, उसको तो नहीं ले सकते हैं। तो वर्ग स्थान भी कितने रहेंगे? 256 ही रहेंगे, जितने वर्ग है उतने ही वर्ग मातृक होंगे, यही तो कहना चाहती हूँ मैं। हाँ, वो किसको लेना उसमें वो बात अलग है,
स्थान अलग अलग हो जाएंगे।
जैसे वर्ग मातृक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 को लेंगे, और वर्ग में किसको पकड़ेंगे? 1 को लेंगे, 4 को लेंगे, 9 को लेंगे, परंतु ये कितने हुए टोटल? हाँ, उसके नंबर ऑफ स्थान कितने हो गए ये अलग है ना, उस धारा में कितनी संख्या होगी, ये तो समान है ना दोनों जगह। क्योंकि यहाँ तो हमने किसका वर्ग होता है बताया, और ये वर्ग कौन सा होता है उसको कहा, तो उसके दोनों के इक्वल नंबर होने चाहिए। क्योंकि 1 का वर्ग यहाँ लिखा, 2 का वर्ग लिखा, 3 का वर्ग लिखा, 10 का लिखा, 100 का लिखा, 256 का लिखा,
वहाँ पे वर्ग लिखे, यहाँ पे माता।
हाँ, ये इनकी माता लिखी, हर एक की एक एक माता, दो चार वर्गों में मिलकर एक माता नहीं होगी। हाँ, मातृक में लेंगे ना, हर एक को लेंगे, माताएं है ना, 2 का वर्ग हो सकता है, 3 का वर्ग हो सकता है, 4 का वर्ग हो सकता है। अगर अवर्ग मातृक धारा में नहीं लेना है, वो दो आगे के स्थान नहीं लेना है, वर्गमूल के आगे के 256 स्थान हो गए। कैसे कम रहेंगे? गिनो ना, अंतिम स्थान पनट्टी को गिनना है, पनट्टी का नंबर 256 वा आएगा ये, फिर आप पनट्टी को मतलब छोटी संख्या ले लो,
100 तक पता।
100 तक लेंगे, 1 से 100 तक लेना है। अभी 1 से 100 में वर्ग स्थान गिनो आप, पहले हम वर्ग स्थान को लेंगे, वर्ग धारा 1 है, वर्ग रूप स्थान है
4
है,
16
है, 9 है,
16
है,
27
है, 25 है,
आप
बीच में घन ले रहे,
36 है,
6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये लिखा वर्ग धारा, अभी वर्ग मातृक धारा यहाँ लिखो, ये किसका नंबर है? ये इसकी माता है 1, इसकी माता है 2, इसकी माता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसकी माता है, हाँ, उन दोनों में उस धारा की संख्या समान होगी, क्योंकि जितने ये है उतने उस धारा के हम गिनेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, वो तो उतने ही रहेंगे ना, क्योंकि जिनका जिनका वर्ग कर सकते हैं वो वर्ग धारा में आ गए, ये वर्ग मातृक में गिने, और जो वर्ग करके जो संख्या आई वो वर्ग धारा में गिनाई, तो इतने ही संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। 10 तक हम कर सकते हैं, उसका 100 हो गया, उसके पास नहीं जा सकते, उसको पास नहीं कर सकते। तो यहाँ वर्ग मातृक में अंतिम स्थान है 10, सो 1 से 10 कंटिन्यूस में हमने वर्ग मातृक कहा, और वर्ग धारा में ये मातृकों का वर्ग करते जाओ, 1 का वर्ग किया, 2 का किया, 3 का किया, 10 तक के सभी किए, यही वर्ग स्थान हो गए। समझ में ही बात? वैसे अवर्ग में ऐसा ही लेना, अकृति धारा में, अकृति धारा ये बीच बीच में जो छोड़े ना हमने 1 से 100 तक, 10 तो वर्ग धाराएं हैं, तो 90 है, ये अकृति धारा में आ जाएगी। अब ये वर्ग मातृक में कितने आ जाएगा, अवर्ग मातृक वो अलग बात होगी, जिनका वर्ग नहीं हो सकते वो भी उतने ही हो जाएगा ना, ये भी 90 है और ये भी 90 है। वही तो हमने वहां केवल ज्ञान माइनस उसका प्रथम वर्गमूल देखा, 100 तक 100 माइनस उसका प्रथम वर्गमूल कितना होगा, 90 होगा, 100 माइनस 100 का वर्गमूल 10, 9, 90 हो जाएगा ना, तो 90 संख्या किसकी होगी, अवर्ग धारा अकृति धारा की भी होगी, और अकृति मात्रूप की भी होगी। हाँ एक्चुअल वहाँ किसको वहाँ उस स्थान पर लिखना वो बातें अलग होगी,
अलग अलग होगी,
पर नंबर ऑफ स्थान उतने ही होगी, नंबर ऑफ स्थान उतने होगी। कहाँ पर थे हम? हाँ 57-58 पर थे ना, ये हुआ क्या अपना? हाँ विशेषार्थ पढ़ेंगे, इतना इतना विशेषार्थ है ना, उस फिर घन मातृक बाद में लिखेंगे। अवर्ग मातृक देख रहे थे हम, विशेषार्थ पढ़ना बाकी था। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वर्ग संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे सब संख्याएं इस अवर्ग मातृक धारा में ग्रहण की है, यानी इनका वर्ग नहीं कर सकते। यानी केवल ज्ञान का जो प्रथम वर्गमूल है उसके जो आगे से कहां तक की, केवल ज्ञान तक की संख्या है, इस धारा का प्रथम स्थान एक अधिक केवल ज्ञान का प्रथम वर्गमूल है और अंतिम स्थान केवल ज्ञान है तथा मध्यम स्थान अनेक प्रकार के हैं। अब हमारी संदृष्टि में लिख रहे इस धारा के समस्त स्थान केवल ज्ञान के प्रथम वर्गमूल से रहित केवल ज्ञान प्रमाण है। जैसे 257 से लेकर 58 तक ये उसका अंतिम स्थान हुआ, ये सब क्या है? अवर्ग मातृक है इस धारा में, यानी अवर्ग मातृक धारा में केवल ज्ञान के अर्ध छेद वर्गशलाका और वर्गमूल आदि नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वर्गमूल नहीं पाया जाता है ना, क्योंकि वर्गमूल तो वर्ग मातृक में गया। हाँ तो वर्गमूल ही वर्ग मातृक में गया, तो आगे की संख्या सब बड़ी बड़ी है उससे। समझ में आती बात? क्योंकि वो सारी संख्या इससे बढ़कर है, प्रथम वर्गमूल से बढ़कर है। केवल ज्ञान के अर्धच्छेद भी उसके प्रथम वर्गमूल से ज्यादा है, उसकी वर्गशाला का वर्गमूल ये उसमें नहीं पाए जाएंगे, यही कहना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, दो पनट्ठी के अर्धच्छेद हो गए 16 हुए थे ना,
16 हुए थे, प्रथम वर्ग में सबसे ज्यादा है अर्धच्छेद 16।
हाँ हाँ ये छोटे छोटे, हम ये आगे की बातें देखें।
हाँ
ये सब आगे या नहीं उससे छोटे है, ये कहना है। देखो हमने पनट्ठी मान ली है, पनट्ठी के अर्धच्छेद कितने होते हैं? 16। तो 16 का वर्ग हो सकता है, 256 तक की संख्याओं का वर्ग हो सकता है, तो अवर्ग मातृक में यानी अवर्ग मातृक में वो नहीं है। वर्गशाला का कितनी है उसकी? 4 है,
तो 4 भी
4 का वर्ग हो सकता है, अवर्ग में वो नहीं है, अवर्ग मातृक में। वर्गमूल का भी वर्ग हो सकता है जो पनट्ठी प्रमाण है, पनट्ठी का वर्गमूल 256 है, वो तो वर्ग मातृक में कहलाएंगे, अवर्ग मातृक में वो नहीं आएगा। 256 का वर्ग हो सकता है किसका?
पनट्ठी का
256, वो सब वर्ग मातृक धारा के स्थान है ना, 257 से सब ये कम है। यानी 257 के आगे के स्थान हमने लिए ना, इसलिए अब यहीं रुकेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन
नमो सिद्धानम नमो।